मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 9 दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही स्वागत करता हूं मित्रों विकेश कुमार सिंह का जो छपरा बिहार से हैं जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च की क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे संतुलित अध्ययन की आवश्यकता इस विषय पर बात करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, एक अभी जो सबसे बड़ी जो बात हुई है इन 2-3 दिनों के दौरान, अखबारों में भी इनके बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा है, टीवी चैनल्स पर देखिए बहुत लंबी लंबी और बड़ी बड़ी और गर्मजोशी से भरी हुई बहसें आ रही हैं, आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं और लगता है मुझे कि कुछ समय तक और आते रहेंगे। यह विषय क्या है शायद आपकी समझ में आ गया होगा और सच पूछे तो आप ही जाना चाहिए। हैदराबाद में जो एक डॉक्टर लड़की के साथ जो रेप का मामला हुआ था, आपको मालूम है कि इसको लेकर के पूरे देश में जबरदस्त रोष था। इस पर हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें भी करते रहे हैं। उसका समापन, रोष का समापन नहीं, मतलब यह घटना इस चरण तक आ चुकी है कि आपने पाया कि जो 4 व्यक्ति जो आरोपी के रूप में पकड़े गए थे वो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। अब ये जो पुलिस मुठभेड़ है इसको लेकर के एक जबरदस्त किस्म की बहस देश भर में छिड़ गई है। यहां आपको देखिए बहुत क्लियर अपनी स्थिति को समझना होगा। देखिए, व्यक्तिगत राय इस मुठभेड़ के बारे में आपकी चाहे जो भी हो वो एक अलग मुद्दा है और उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मेरा काम यहां सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपको चूंकि गाइड करना है, इसीलिए मैं केवल उसी एंगल से बात करूंगा। और याद रखिए कि मैं जो यहां एंगल बता रहा हूं उसे आप कोई मेरा भी अपना विचार न समझें, है ना। यह है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इस घटना को किस तरीके से देखना चाहिए। फ्रेंड्स, यहां देखिए कि जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं, आप देखिए कि सामान्य तौर पर इस मुठभेड़ की पूरी देश प्रशंसा कर रहा है, कुछ लोगों को छोड़कर के, कुछ इसके विरोध में भी आवाजें उभर रही हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आप यूं कह लीजिए कि पूरे देश एक तरह के संतोष का भाव महसूस कर रहा है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसे यह लग रहा है जैसे कि प्रतिशोध ले लिया गया, ठीक है, ये अपनी तरफ है। यहां तक कि पार्लियामेंट तक में, संसद जो हमारे विधायिका है और जो कानून बनाती है, उस तक में पुलिस के मुठभेड़ की इस घटना की एक प्रकार से सराहना ही की गई है, व्यक्तिगत तौर पर कुछ सांसदों ने, और यहां तक कि संसद के अंदर भी कुछ सांसदों ने, कुछ ने इसका विरोध भी किया, कुछ सांसद ने बकायदे इस मुठभेड़ का विरोध भी किया है। लेकिन ज्यादातर अभी जो जन राय है आप कह लीजिए वो लग रहा है कि जैसे नहीं नहीं ठीक है, उनको इसी तरह से मारा जाना चाहिए था, उनके साथ यही होना चाहिए था। दोस्तों, यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। पहला है आपके फोर्थ पेपर में जो मेंस का है, इमोशनल इंटेलिजेंस का ये उदाहरण है। आप है, इसमें आप बहुत सी चीजें आप देख सकते हैं। जब हम इमोशनली चीजों के बारे में फैसला लेते हैं तो लगता है कि यह ठीक हुआ, प्रतिशोध वही कराता है, लेकिन जब हम उसमें इंटेलिजेंस को शामिल करते हैं तो देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, जहां आप अपनी भावनाओं को समझ रहे हैं, साथ ही साथ आप सामने वालों की भावनाओं को भी समझ रहे हैं, और दोनों की भावनाओं को समझने के बाद उसे बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहां आप राष्ट्रीय भावनाओं को समझ रहे हैं, साथ ही साथ आप खुद की भावनाओं को भी समझ रहे हैं, लेकिन यहां एक चीज और भी है, जो इंटेलिजेंस जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है हमारे संविधान से, कि हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, तो हम उसकी भी उपेक्षा नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं ये जो बात आपको बता रहा हूं ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की दृष्टि से बता रहा हूं, तो आपको इसे इसी रूप में देखना और समझना होगा। मैं फिलहाल इस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो बहुत से आर्टिकल्स, एडिटोरियल कमेंट्स और भी बातें आप सबको सुनने और पढ़ने को मिलेंगी। हाँ, मैं ये सलाह जरूर दूंगा कि उन सब सुनने और पढ़ने के बाद जो उसमें बहुत ही आपको सॉलिड पॉइंट्स लगते हैं, बेहतर होगा कि आप उन्हें नोट करते चले जाएं, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में भी पूछा जा सकता है, जो मेंस की मैं बात कर रहा हूं, और फोर्थ में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, या और दूसरे रूप में पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कि इससे पहले हिंसक भीड़ पर मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया है ना, जिसे आप लिंचिंग कहते हैं, मॉब लिंचिंग, हिंसक भीड़। यहां वो हिंसक भीड़ तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आप जन आक्रोश का दबाव आप कह लीजिए, अगर घटना का उससे संबंध है तो थोड़ा बहुत आप मीडिया ट्रायल भी कह सकते हैं, जो आप रुस्तम फिल्म में देखते हैं कि मीडिया भी जन आप कह लीजिए कि भावों का निर्माण करता है, जनता की भावनाएं बनाता है, उसमें चाहे आक्रोश पैदा करे, चाहे उसमें सहयोग की भावना पैदा करे, और उसका भी दबाव जो एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरे क्षेत्रों पर पड़ता है, तो बहुत सारे इश्यूज इससे जुड़े हुए हैं। तो हम लोग कभी इस पर डिटेल में जब चीजें हमारे सामने आ जाएंगी तब फिर बातें करेंगे। मित्रों, इसी के साथ ही जुड़ा हुआ एक और भी मुद्दा है जो इस बीच में उठा है, और वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर के। देखिए, इन कोर्ट का गठन ही इसलिए किया गया है न्यायालयों का कि वो जल्दी से निर्णय दें। लेकिन अभी जो कुछ हमारे सामने आ रहा है सुनने में और पढ़ने में भी, कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है, इनने भी अब वो फास्ट शब्द को किनारे कर दिया है। मतलब यहां भी बहुत समय से मामले लंबित हो रहे हैं, पड़े रहते हैं, और फिर चलिए उन्होंने फैसला दे दिया तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा डिले करने वाली व्यवस्था है, यानी कि देरी करने वाली व्यवस्था है। और सच पूछे तो जनता में जो अभी आक्रोश है इस बात को लेकर के, वो इसी की प्रतिक्रिया में है कि चलो पता नहीं अभी कोर्ट कचहरी का मामला होता तो पता नहीं ये कितने साल खींचता रहता। आप देख लीजिए, निर्भया कांड का भी उदाहरण आ रहा है कि 2012 दिसंबर की ये घटना है और अभी तक आरोपियों को फांसी की सजा नहीं दी गई है, या जो भी उन्हें दंड दिए गए हैं। तो जनता को ऐसे में लगता है कि भैया जो भी हो फटाफट हो जाए, तो अगर न्याय व्यवस्था हमारी थोड़ी सी दुरुस्त हो जाए कि वो चीजों के बारे में जल्दी निर्णय ले लेती है, तो हो सकता है कि फिर जन आक्रोश भी इतना न उभरे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं, इन पर हम लोग सिलसिलेवार आगे चल करके अगर वक्त मिला तो बात करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है संतुलित अध्ययन की आवश्यकता। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में मैं जो महसूस करता हूं आप सबसे मिलने के बाद, तो मुझे लगता है कि आप सबके अंदर एक बहुत विचित्र किस्म की बेचैनी है और बहुत ही विचित्र किस्म का द्वंद्व है। बेचैनी और द्वंद को आप एक दूसरे से जोड़ करके भी देख सकते हैं, और वहां से फिर बेचैनी और द्वंद से आपके दिमाग में कुछ सवाल उठते हैं, और बल्कि सच पूछे तो सवाल उठते ही नहीं बल्कि वो अपने आप में उन सवालों के उत्तर भी ढूंढ लेते हैं। आपको लगता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब एक तो सवाल यहीं से पैदा होता है कि सिविल सर्विस चूंकि बहुत बड़ा एग्जाम है, हिंदुस्तान की सबसे कठिन परीक्षा है, तो कठिन परीक्षा के लिए आपको बहुत ज्यादा घंटे पढ़ने चाहिए, बहुत ज्यादा वर्ष लगाने चाहिए, बहुत ज्यादा किताबें पढ़नी चाहिए, बहुत कठिन कठिन चीजें मालूम होनी चाहिए, और चूंकि जनरल स्टडीज के चार पेपर है तो उस जनरल स्टडीज में तो कुछ भी पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए जितना भी सामने आए उन सबको पढ़ लेना चाहिए। इस तरह के आप अपने उत्तर खुद ही तैयार कर लेते हैं, या यूं कह लीजिए कि जब आप किसी से बात करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपने अपने जो उत्तर तैयार कर लिए हैं उनसे मैच करता हुआ ही वो बात कर देता है, यानी कि उसको उस पर मुहर लगा देता है, उसको जस्टिफाई कर देता है। और जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो कुछ समय तक तो आप ठीक ठाक तैयारी कर रहे होते हैं संतुलन के साथ, लेकिन धीरे धीरे असंतुलन आने लगता है, मन में बेचैनी और बढ़ने लगती है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझसे तो ये तैयारी नहीं हो पाएगी। कुछ समय तक तो कर लिया आपने, नया नया कर लेता है व्यक्ति, लेकिन बाद में आप ढीले पड़ने लगते हैं। दोस्तों, इसका उपाय क्या है? इसका जो उपाय है और जो सर्वोत्तम उपाय है वो है कि जो घटनाएं हैं, जो चीजें हैं, जो आपकी आवश्यकता है या सिविल सर्विस की जो का जो पूरा का पूरा स्वरूप है, उसके प्रति आप एक संतुलित धारणा विकसित करें, सच्चाई में जाने, यानी कि एक यथार्थवादी दृष्टि रखते हुए जाने कि वाकई में रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप इसे जानेंगे कैसे, बताएगा कौन? चलिए, बताने वाले चाहे जो भी बताते हो, लेकिन कुछ तो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। आपके पास बाकायदे सिलेबस है, आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप इन दोनों के तालमेल के आधार पर अपने लिए भी एक तालमेल वाला रास्ता निकाल सकते हैं, एक संतुलन वाला रास्ता निकाल सकते हैं? कभी आप उन पर बहुत ध्यान दीजिए, सरसरी निगाह से नहीं, बहुत ध्यान से उनको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, सिलेबस और इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, और दोनों को एक साथ रख करके देखिए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 5 दिन सिर्फ इसी में लगा दीजिए, सिर्फ इसी में लगा दीजिए। और फिर आप पाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत घंटे रोजाना पढ़ने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आपको पंचवर्षीय योजना बनाने की जरूरत है, और ऐसा भी नहीं है कि बाजार में किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट पर जितनी किताबें मिल रही हैं, जो भी जानकारियां मिल रही हैं, आपको वो सब जानने की जरूरत है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। और सच पूछे तो तभी आप इनफैक्ट सही मायने में एक संतुलन की स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो संतुलन की स्थिति क्या होगी मित्रों? जो संतुलन की स्थिति होती है, देखिए, शुरू में आपको एक साल पूरी तरह से यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए। मैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, यानी कि जो आपका सिलेबस है, यूपीएससी ने जो प्रिस्क्राइब किया है, आप उसी सिलेबस को लीजिए। आप उस सिलेबस को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। सिलेबस को समझने के लिए सिलेबस के माध्यम से अपने पूरे के पूरे पढ़ाई को, जो पढ़ रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कीजिए। साल भर आप इसमें दे दीजिए। जब आप शुरू के साल लगाएंगे तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा आपको ज्यादा समय देने की जरूरत पड़ेगी। अब आप देखिए कि आपके पास कितना वक्त है। अगर आप पूरा वक्त इसके लिए दे सकते हैं तो एक दिन में 7-8 घंटे दे दीजिए, लेकिन अगर आप पूरा वक्त नहीं दे सकते तो आप एक दिन में 3-4 घंटे दे दीजिए, लेकिन फिर आप एक साल को बढ़ा करके 1.5 साल कर दीजिए। उसमें क्या फर्क पड़ता है, आप 2 साल कर दीजिए, लेकिन हड़बड़ी मत कीजिए। जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब फिर आपको कितने घंटे चाहिए, मुझे लगता है कि इसके बाद आप अगर 3-4 घंटे भी रोज, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ, अनुशासन के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप दे देते हैं, तो फिर एक साल और अगर आप इसे दे देंगे तो आप यूं मान करके चलिए 6 महीने भी दे देंगे तो आपके एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी हो गई। अब आप एग्जाम के लिए भी तैयार हो गए हैं, यूपीएससी के लिए आप तैयार हो ही चुके थे। इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। जब मैं कह रहा हूं यूपीएससी के लिए तैयार, यानी कि सिलेबस आपका तैयार हो गया है। जब मैं एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं तो फिर वो एक्सक्लूसिवनेस आ जाती है कि एग्जामिनेशन के लिहाज से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, अभी कौन सी घटनाएं घट रही हैं, घटनाओं के आधार पर जो जनरल स्टडीज का पेपर है वो बहुत अधिक सेट किया जाता है, उनके आधार पर फिर आप उन घटनाओं पर ज्यादा जोर देंगे, आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ये एग्जामिनेशन की तैयारी की बात है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर आप सिंसियरली 1.5 साल इसको दे देते हैं तो आपकी तैयारी हो जाती है। जहां तक बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की बात है मित्रों, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं। आप जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, गंभीरता से जाकर के उसे पूछिए, और वो ओपनली कहते भी हैं कि आपको ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, चीजें कुछ ही हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा मटेरियल के चक्कर में पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में अच्छे से बिंब नहीं बन पाते, आपका दिमाग बिखरने लगता है, फिर उनको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो आप जो एक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, आप स्टैंडर्ड बुक्स ले लीजिए और उनको समझ लीजिए, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, आप देखिए कि आपके दिमाग में उनके बहुत अच्छे इमेज भी बन जाएंगे और आपकी तैयारी भी बहुत परफेक्ट तरीके से हो जाएगी। मित्रों, इसे ही मैंने नाम दिया है संतुलित अध्ययन की आवश्यकता। बहुत ज्यादा द्वंद में मत रहिए, बहुत ज्यादा इधर उधर हाथ मत मारिए, बहुत ज्यादा भटकिए मत, कुछ चीजें निर्धारित कर लीजिए और फिर अनुशासन के साथ उसे निभाइए। अनुशासन सबसे अधिक जरूरी है। तो मित्रों, ये थी आज मुख्य विषय के बारे में कुछ बातें। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं इना गोयल, तन्मय कश्यप मुजफ्फरपुर बिहार से, सगुना श्रीमाली और सूरज कुमार, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।